الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام نماز. اس میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت، نہ پڑھنے کی وعیدیں، اس کے علاوہ نماز کے احکام، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کی شرائط کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کا موقع تھا اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے اور آپ کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر میں قرب نصیب ہوا. میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں میں نے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاؤں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اسے آسان فرما دے. اور پھر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، وہ عمل کیا تھا، آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج بھی کرو. پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں تمہیں اس معاملہ کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور، آپ ارشاد فرمائیے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملہ کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام ہوگا تو بعد میں بیان کردہ تمام جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں گے، لیکن اگر کسی کے پاس اسلام کی دولت ہی نہیں ہے تو اس کے تمام اعمال رائے گاہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس معاملہ کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز اس کا ستون ہے اس تمام معاملے کا، کہ جس پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی عظمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی अलैहि वालैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ते रहें, और नमाज कैसे पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज के अहकाम के हवाले से गुज़िश्ता सिलसिले में आप समाप्त कर रहे थे, ये कितने हैं? 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, सजदा, क़ादा अखीरा और खुरूज बिसुनई ही। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जो नमाज में फ़राइज का दर्जा रखती हैं। इनमें से तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात और रुकू के बारे में कुछ डिटेल के साथ, तफसील के साथ गुज़िश्ता सिलसिले में आपने समाअत फरमाया था। आइए आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। 5वां फर्ज है सुजूद, यानी सजदा करना। एक हदीस मुबारक में आता है, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस मुबारक को हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा बंदे को कुर्ब अल्लाह तबारक व ताला का इस हालत में हासिल होता है कि वो सजदे में हो। सजदा ऐसा अमल है कि इंसान जब सजदे में जाकर अपने रब तबारक व ताला की तस्बीह को बयान करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की वजह से अपने इस बंदे को अपना कुर्बे खास अता फरमा देता है। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन असजुदा अला सबअति अज़ुमिन। इरशाद फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, और वो कौन कौन सी हैं? फरमाया, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव, यानी दोनों कदम। और ये हुक्म दिया गया कि ना बालों को संवारूं और ना ही कपड़ों को मोड़ूं, यानी कपड़ों को इकट्ठा करना जैसे समेट लेना होता है, इससे भी मना किया गया कि नमाज में ऐसा अमल ना किया जाए। पेशानी का जमीन पर जम जाना ये सजदा की हकीकत है, और पाँव की एक उंगली का पेट जमीन पर लगना ये शर्त है। जमने के माना यह है कि सजदा इस अंदाज में करे कि जमीन की सख्ती से महसूस होने लगे। और अगर किसी ने सजदा इस तरह किया कि पेशानी जमीन पर ना जमी तो फरमाया कि उसका फिर सजदा ही अदा नहीं हुआ। बिल्कुल लाइट अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और जमीन की सख्ती उसे महसूस ही नहीं हुई तो फरमाया ये तो उसका सजदा ही नहीं हुआ। और सजदा जबकि नमाज में एक फर्ज की हैसियत रखता है, तो जब एक फर्ज ही अदा नहीं होगा तो फिर नमाज कैसे अदा होगी? तफसील इस हुक्म शरई की ये है कि सजदे में पाँव की कम से कम एक उंगली का पेट जमीन पर लग जाना ये फर्ज है, और दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां यानी अक्सर उंगलियों का पेट जमीन पर लग जाना ये वाजिब है, और 10 उंगलियां जो पांव की है उनके पेट का जमीन पर लगना यानी क़िबला रूह हो जाना ये सुन्नत है। और अगर किसी ने बिला उज़्रे शरई दोनों पांव जमीन से उठाए रखे या सिर्फ उंगलियों की ये नोकें ये सिरे लगाए तो फरमाया कि इन नोकों के लगने से भी उसका फर्ज अदा नहीं होता, तो फिर इस सूरत के अंदर नमाज नहीं होगी। और अगर एक या दो उंगलियों का पेट जमीन पर लगे और अक्सर यानी 3-3 का पेट जमीन पर ना लगे तो अगर भूले से ऐसा हुआ हो तो फुका फरमाते हैं कि सजदा सहव इस पर फिर वाजिब है, और अगर जानबूझकर ऐसा किया तो इस सूरत के अंदर नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल एयादा होगी, यानी उस नमाज का दोबारा पढ़ना लाजिम है। उंगलियों का पेट जमीन पर लगना, जो पाँव के तले होते हैं उंगली यूं मुड़कर किबला रूह हो जाए, इस तरह इसको पेट लगना कहा जाता है। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ले इस हवाले से फतावा रिजविया शरीफ में लिखते हैं कि सजदे में फर्ज है कि कम अज कम पाँव की एक उंगली का पेट जमीन पर लगा हो, और हर पाँव की अक्सर उंगलियों का पेट जमीन पर जमा होना ये वाजिब है। फिर फरमाया कि पाँव को देखिए, उंगलियों के सिरे जमीन पर होते हैं, यूं सिरे बिल्कुल लगते हैं नोके, किसी उंगली का पेट बिछा हुआ नहीं होता। सजदा इस्तराब बातिल, नमाज बातिल। और मुसल्ली साहब यानी जो नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाजी नमाज पढ़कर घर को चल दिए। और दूसरे एक मकाम पर इस मसले को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इस मसला से बहुत से लोग गाफिल हैं। मौजूद चैनल के नाजिन, कितना अहम मसला बयान हुआ, और हमारे सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसे अपनी किताब में दर्ज फरमाया। इतना अहम मसला है और लोगों की एक तादाद है जो इस मसले से बिल्कुल गाफिल है। इससे पता यह चलता है कि हमारे पास वो नॉलेज नहीं कि जिसके जरिए हम अपनी नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें कि वो कबूलियत के दर्जे पर फायज हो जाए। तो फिर क्या होना चाहिए? हमें इल्म सीखना चाहिए, और इल्म सीख कर अपने आमाल को दुरुस्त तरीके से अदा करना है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर उम्मीद भी रखनी है। कि इंसान को खौफ और उम्मीद के दरमियान में रहना चाहिए, डर भी हो कि पता नहीं मेरी नमाज रद्द कर दी जाएगी या कबूल कर दी जाएगी, और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद भी रखे लेकिन आमाल दुरुस्त तरीके से अदा करे। सिर्फ सिंपल इसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए अदा न करे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है तो उसके अदा करने के तरीके भी सीखे, और उन तरीकों को सीख कर फिर उसके मुताबिक अपनी नमाज को अदा करें। एक मसला फुकहाए किराम ये भी इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी उज्र के सबब पेशानी जमीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक से सजदा करे, फिर भी फकत नाक की नोक लगना काफी नहीं बल्कि नाक की हड्डी जमीन पर लगना ये जरूरी है। क्योंकि पेशानी जमीन पर लगाना ये फर्ज है और नाक की हड्डी जमीन पर लगाना ये वाजिब है। पेशानी ना लगी तो फर्ज अदा ना हुआ, और अगर नाक की हड्डी जमीन पर ना लगी तो इससे वाजिब तर्क हो जाता है, और वाजिब तर्क करने से भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती। इन तमाम चीजों को जहन में रखिए और उसके मुताबिक फिर नमाज को अदा करें। हर रकत में दो सजदे करना ये फर्ज है। आइए सजदे के कुछ आदाब और सुन्नतें भी अर्ज करता हूं। सजदे में जाने के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना चाहिए कि यह सुन्नत है। सजदा में कम अज कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह पढ़नी चाहिए। सजदे में हथेलियां जमीन पर रखना, यानी हाथों की ये जो हथेलियां हैं ये जमीन पर रहें, और हाथों की जो उंगलियां हैं वो मिली हुई किबला रुख होनी चाहिए। मर्द के लिए सजदा इस तरह करना सुन्नत है कि बाजू करवटों से और राने पेट से जुदा हो जाएं, कलाइयां जमीन पर ना बिछी हुई हों। हां, जब सफ में हों तो फिर बाजू करवटों से जुदा ना रखिए, कि इस तरह करने से अगर खुले हुए बाजू रखेंगे तो साथ वाले जो नमाजी हैं उनको तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है। सजदा में दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट इस तरह जमीन पर लगाइए कि 10 उंगलियां किबला रुख हो जाएं, ये भी सुन्नत है। सजदे में जाएं तो जमीन पर पहले घुटने रखें, यानी अगर कौमा किया है फिर उसके बाद अब बैठना है और सजदा करना है, तो सबसे पहले जब जमीन की तरफ झुकेंगे तो घुटने जमीन के साथ लगें, फिर उसके बाद हाथ, फिर नाक, और फिर इसके बाद पेशानी। और जब सजदे से उठेंगे तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी पहले पेशानी जमीन से उठाएंगे, फिर उसके बाद नाक और फिर हाथ उठाकर अपनी रानों पर रख लेंगे, और दूसरे सजदे के बाद जब उठना चाहेंगे तो अपने घुटनों पर थोड़ा जोर देकर फिर इस तरह पांव पर खड़े हो जाएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बहुत अहम मसले की तरफ निशानदही करना चाहता हूं। किसी नरम चीज मसलन घास, रुई, कालीन वगैरह पर सजदा अगर किया तो इसमें जरूरी तौर पर यह एहतियात रखनी होगी कि पेशानी जमीन पर जम जाए, यानी इतने दबे कि अब दबाने से न दबेगी तो फिर जायज है, अदरवाइज ये सजदा दुरुस्त ना होगा। यानी बिल्कुल लाइट सिंपल पेशानी का घास पर या कालीन पर रख देना कि जमीन की सख्ती महसूस नहीं हुई, यानी अंदाज ऐसा नहीं है कि अब दबाए तो मजीद नहीं दबेगी, तो फिर ऐसी सूरत में सजदा अदा नहीं होता। आजकल मसाजिद में अमूमन आपने देखा होगा कि कारपेट बिछाने का आम रवाज पड़ चुका है, बल्कि बाज जगह तो ऐसा है कि कारपेट के नीचे मजीद फोम की एक तह बिछा देते हैं। कारपेट पर सजदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना यह बहुत जरूरी है कि पेशानी अच्छी तरह जमीन पर जम जाए, वरना नमाज ना होगी। और नाक की हड्डी ना दबी तो नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल एयादा होगी। तो लिहाजा चूंकि आम मसाजिद के अंदर इसका एहतमाम होता है, कलीन बिछाए जाते हैं, कारपेट होते हैं और उनके नीचे फोम भी बिछाए जाते हैं। आजकल तो बाद मस्जिद के अंदर फोम मोटी तह वाले बिछाए जाते हैं, जबकि उसमें जब पेशानी को दबाया जाता है तो मजीद दबने की हाजत अभी मौजूद होती है, तो इस तरह सजदा अदा नहीं होगा। तो इसके लिए एहतमाम करते हुए ज्यादा मोटे फोम ना रखे जाए, बल्कि इक्तफा कर लिया जाए अकेले कारपेट के ऊपर ही, और फिर इसी तरह नमाज को अदा कर लिया जाए। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि बाज जगहों पर सर्दियों के मौसम में मस्जिद में चावल का भूसा या तूड़ी वगैरह बचा ली जाती है, इन लोगों को सजदा करने में भी इसका लिहाज करना ये बहुत जरूरी है कि अगर पेशानी खूब ना दबी कि मजीद दबाने की हाजत अभी मौजूद है, तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज ना होगी। पेशानी लग गई और मजीद दब भी गई है, मजीद दबाने की हाजत भी नहीं है, लेकिन नाक की नोक लगाई है, ये हड्डी जमीन पर नहीं लगी, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल एयादा होगी। इसी तरह गद्दों का हुक्म है, जो स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं उन पर भी सजदे में पेशानी खूब नहीं दबती, इसलिए नमाज नहीं होगी। लिहाजा नमाज को बचाने के लिए इन चीजों का इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, और इल्म हासिल करने के बाद जब अमल में ले आएंगे तो ये मसाइल इंशाल्लाह खूब अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद मदनी चैनल के नाजरीन, छठा फर्ज है कादाए अखीरा। ये कादाए अखीरा क्या होता है? कादा मतलब बैठना, यानी नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात अब्दुहू व रसूलुह तक ये पढ़ ली जाए, ये फर्ज है। चार रकत पढ़ने के बाद बैठा, फिर ये गुमान हुआ कि शायद तीन हुई हैं और सीधा खड़ा हो गया, अब ये चौथी पढ़ना चाहता है। खड़ा होते ही इसको याद आ गया कि मेरी तो चार कंप्लीट हो चुकी थी, मुझे अब कादा अखीरा ही करना था, अब दोबारा ये बैठ गया और बैठकर सलाम फेर दिया। तो इस हवाले से फुकहा कराम ये लिखते हैं कि दोनों कादे, जो पहले किया था और फिर जो बैठने के बाद किया है, इनका मजमुआ अगर बकदरे तशहुद हो गया तो फर्ज अदा हो जाएगा, वरना फर्ज अदा नहीं होगा। इसी तरह एक मसला और बयान किया जाता है कि चार रकत वाले फर्ज में चौथी रकात के बाद कादा अभी नहीं किया था और फिर सीधे पांचवी रकत के लिए खड़े हो गए, तो फुकहा फरमाते हैं कि जब तक पांचवी का सजदा न किया हो तो बैठ जाए, और अगर पांचवी का सजदा कर लिया या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर नहीं बैठा और चौथी का सजदा कर लिया, तो इन सब सूरतों में फर्ज बातिल हो गए, मगरिब के सिवा और नमाजों में एक रकत और मिला ले। एक शख्स कादाए अखीरा में बकदरे तशहुद बैठ चुका था, उसे बाद में याद आया कि मेरा तो सजदा तिलावत रहता है या नमाज का कोई भी सजदा छूट गया था, अब इसने वो सजदा कर लिया, तो अब इस पर फर्ज है कि सजदा के बाद फिर बकदरे तशहुद बैठे, वो पहला कादा जो इसने किया था वो खत्म हो गया, अब अगर इसने कादा ना किया तो नमाज ना होगी। सजदा साफ करने से पहले कादा बातिल ना हुआ, यानी जिस शख्स को नमाज में सजदा साहब करना था, अब इसने सजदा साहब किया जो इससे पहले कादा किया था, वो बातिल ना हुआ, मगर फिर भी सजदा साहब के बाद जब बैठेगा तो इस पर तशहुद वाजिब है, यानी अगर सजदा साहब करके सलाम फेर देता है तो फर्ज अदा अगरचे हो जाएगा, मगर ये शख्स गुनहगार हुआ, अब इस नमाज का इयादा करना भी वाजिब है। चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है रिकॉर्डेड सवालात का। आइए सवालात लेते हैं कि उसमें साइलिन ने क्या पूछा है।
मेरा नाम उमर हयात अत्तारी है, मैं टोबा टेक संघ से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर कोई मुक्तदी इमाम के साथ तशहुद में आकर मिला, जब मुक्तदी इमाम साहब के साथ बैठा तो इमाम तशहुद से खड़ा हो गया, अब मुक्तदी ने तशहुद पूरा पढ़ना है, जब मुक्तदी तशहुद पढ़कर खड़ा हुआ तो इमाम जो है ना वो रुकू में जा चुका था, तो अब मुक्तदी एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार क्याम में खड़ा हुआ और उसके बाद रुकू में इमाम साहब के साथ चला गया, क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं?
नमाज के तमाम फराइज और वाजिबात में मुक्तदी पर लाजिम है कि वो इमाम की इत्तिबा करे, इमाम की पैरवी करे। लेकिन अगर किसी वजह से इमाम की पैरवी करने में कोई वाजिब तर्क होता हो तो ऐसी सूरत में लाजिम है कि पहले उस वाजिब को अदा करें। अब यहां पर देखिए, इमाम साहब तशहुद में है, मुक्तदी भी तशहुद में आकर इमाम साहब के साथ मिल गया, अभी मिला ही था और इमाम साहब खड़े हो गए, तो मुक्तदी पर लाजिम है यानी वाजिब है कि पहले अब्दुहू व रसूलुह तक तशहुद पढ़े, फिर उसके बाद ये खड़ा हो। चूंकि इस पर वाजिब है और इमाम साहब खड़े हो चुके हैं, तो यहां पर फुकाहा फरमाते हैं कि इस पर इमाम साहब की पैरवी करना यहां वाजिब नहीं। पहले अब्दुहू व रसूलुह तक अतहियात पढ़े, फिर उसके बाद ये खड़ा हो जाए। अब खड़ा हुआ, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ये खड़ा हुआ। हाल ये है कि इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, तो ऐसी सूरत में अब ये एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार खड़ा होने के बाद ये रुकू में चला जाए, और अगर इमाम साहब रुकू से भी आगे सजदे में जा चुके हों तो ये रुकू करके खड़ा हो और फिर सजदे में जाकर इमाम साहब के साथ मिल जाए। ये ताखीर करना गुना नहीं, क्योंकि शरीयत का हुक्म है, तो लिहाजा इसने हुक्म शरीयत पर ही अमल किया है, तो लिहाजा इसकी नमाज इस तरह हो जाएगी।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में यह सवाल है, मसबूक इमाम के सलाम फेरने के बाद क्या वो पहली रकत में सना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
जो शख्स इमाम साहब के साथ आखिरी रकत में शामिल हुआ या दूसरी रकत में शामिल हुआ या तीसरी रकत में शामिल हुआ, अलगर्ज ये कि वो चंद रकतें खो चुका है, इस शख्स को मसबूक मुक्तदी कहते हैं। मसबूक जब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा होगा तो ये वो रकत अदा करेगा जिसमें सना पड़ी जाती है, लिहाजा इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, अब ये खड़ा हुआ। अगर इसकी एक रकत रहती है तो उस एक रकत के अंदर सबसे पहले सना पड़ेगा, तावुज और तस्मिया पड़ेगा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा और साथ कुछ सूरत मिलाएगा, फिर कादा अखीरा में रुकू और सजदों के बाद बैठेगा और सलाम फेर देगा।
मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम अत्तारी है और मैं तांदल्यावाला से बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल अर्ज है कि क्या बंदा जमात से पहले नमाज पढ़ सकता है? जवाब अरशाद फरमा दीजिए, जजाकल्लाहु खैरा।
जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है, मर्दों पर लाजिम है कि जो नमाज जमात मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में अदा की जाती है उस जमात में हाजिर हों। बगैर किसी उजरे शरई के अगर जमात को तर्क करेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगरचे के अगर किसी शख्स ने इस जमात मुस्तहब्बा से पहले घर में या मस्जिद में आकर अपनी नमाज पढ़ ली यानी फर्ज नमाज पढ़ चुका है तो उसकी नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन बगैर किसी उजरे शरई के जमात को तर्क करने की वजह से ये शख्स गुनाहगार होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, ये मसाइल ये अहकाम हम सबको याद रखकर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।